वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और प्रेमी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि यदि हम इसराइलियों की तरह अच्छे कार्यों को करेंगे तो हमें आशीषें मिलेंगी, अन्यथा हम श्रापित होंगे। और हमने यह भी देखा कि परमेश्वर ने इसराइलियों के बारे में यह भविष्यवाणी करवाई कि वे गुलामी में जाएंगे, अर्थात बंधुआई का जीवन जिएंगे, और इसके पश्चात वे फिर से वापस छुड़ाए जाएंगे। और हमने यह भी देखा कि वे लोहे के गर्दन उनके जुआ बनेंगे। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इसके पूर्व कि हम आगे जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए आशीष मांगें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उस पर विचार और विमर्श करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें। हमारी आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोलें, हमें एकाग्रतापन दें। हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए प्रार्थना है जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने रोजगार की तलाश में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं और किसी प्रकार के तनावपूर्ण जीवन को जी रहे हैं। पिता परमेश्वर, अभी इसी वक्त हरेक से आप बातचीत करें, उनके जीवन में अपनी शांति प्रदान करें। हम इस बात को जान सके कि आपने हमें इस संसार में इसलिए बनाया है ताकि हम आनंद का जीवन जिएं, शांति का जीवन जिएं, जो आपके द्वारा हमें प्राप्त होता है। आज अपने हर एक श्रोता भाई बहनों को आप आशीष दें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28 अध्याय और उसके 49 पद को हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग उड़ने वाले उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा को तू न समझेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम पाते हैं कि पश्चिम से आया हुआ रोम, जिसकी भाषा इनसे बिल्कुल अलग थी। हमारी वर्तमान अंग्रेजी भाषा लैटिन पर और यूरोपियन पर आधारित है, परंतु इब्रानी भाषा एशिया और अफ्रीका और उसके आसपास की भाषा है, यह इनसे बिल्कुल अलग थी। परमेश्वर ने कहा, तुम उनकी भाषा भी नहीं समझ पाओगे। मेरे मित्रों, यह बात बहुत ही रुचिकर है कि रोम के मानक सिद्धांत जिन पर बाज का निशान बना है, मैं सोचता हूँ कि इसराइलियों को इसके बारे में सूचित किया गया था और जब वे इस चिन्ह को देखते होंगे जिन्हें दीवारों पर खोदकर लिखा गया था, तब वे तीतुस द्वारा लिखित बातों को पढ़ते होंगे जिस पर बाज का निशान बना हुआ था और कहा गया था बस यही होना है। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसके 50-53 पद में लिखा है, उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा, वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे, और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा, और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु और न टटका तेल और न बछड़े न मेमने छोड़ेंगे यहाँ तक कि तू नाश हो जाएगा, और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहर पनाहों में जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाए। तब घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। मेरे मित्रों, इतिहासकार जोसिफस हमें बताते हैं कि कैसे एक माँ को अपने बच्चे को उन्हें देना पड़ा और उनके ही सामने उनका मांस खाया गया। लोग मारे गए और उनकी भूमि की उपज लूट ली गई। उन्हें दीवार के बाहर अर्थात शहर के बाहर फेंक दिया गया। मैं यह कह सकता हूं कि यह भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है और अब यहूदी सारे देशों में तितर बितर होकर रहते हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 उसके 64 पद में लिखा हुआ है, और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। वे उस निष्कासन के बाद कभी नहीं लौटे। उस भविष्यवाणी का पूरा होना अभी बाकी है क्योंकि इस निष्कासन से संबंधित तीन भविष्यवाणियां हैं और तीन भविष्यवाणियां उनके वापस लौटने के बारे में हैं। वे दो बार तो वापस आ चुके हैं परंतु तीसरी बार उनका वापस आना अभी बाकी है। हमारे पास कुल 6 भविष्यवाणियां हैं जिनमें से 5 लिखित रूप में पूरी हो चुकी हैं और छठी भविष्यवाणी के बारे में क्या सोचते हैं? जो मैं सोचता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि यह भी पूरी होगी, इसे भविष्य में पूरा होना बाकी है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसके 65 से 67 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन कलपता रहेगा और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा कि सांझ कब होगी और सांझ को आह मार के कहेगा कि भोर कब होगा। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। मेरे मित्रों, यह सब भविष्यवाणियां लिखित रूप में पूरी हो चुकी हैं और न जाने कितनी बार कितनी सदियों से यहूदियों के सता हुए हैं। यह सब उनकी अनाज्ञाकारिता का परिणाम है। उनका दिल उस समय धक-धक करता है, उन्हें कोई आराम नहीं मिलता है और वे सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक बस सोचते रहते हैं। यह कितनी दुखद बात है। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। हम सब के लिए इससे क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हम भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें ताकि हम अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त करें। यह बात हमें प्रेरणा देती है कि हमें इनके पास भी सुसमाचार लेकर जाना चाहिए जो देश से निष्कासित किए जा चुके हैं। प्रभु यीशु का सुसमाचार सबके लिए एक समान है, फिर चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी, और इसका संबंध आज्ञाकारिता के विषय में है जो सभी देशों में विश्वास से संबंधित है। हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। मेरे मित्रों, यहाँ पर कोई भी जाति विश्वास करके उसकी बातों को मान सकता है और आशीषों को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर अध्याय 28 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 29 से जारी रखेंगे। हम अध्याय 29 और 30 में फलिस्तीनी वाचा से संबंधित बातों को देखते हैं। डॉक्टर लेविस स्प्रे येफर अध्याय 28 से 30 को वाचा के अध्याय के रूप में देखते हैं। और स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल अध्याय 29 से 30 के 10 पद तक और अध्याय 29 को परिचय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं अपने अध्ययन में अध्याय 29 उसके 30 से 10 पद तक के वचन को वाचा के रूप में लेता हूँ। यद्यपि जो वाचा है वह अध्याय 30 के पहले 10 वचनों में पाया जाता है। यह अध्याय 29 की जो पृष्ठभूमि है उसे बताता है। परमेश्वर की दया का वृतांत, यह मूसा द्वारा चौथी बार दोहराया गया है। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 29 अध्याय और 1 पद। लिखा हुआ है, इसराइलियों से जिस वाचा के बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी, उसके ये ही वचन है, और जो वाचा उसने उनसे होरे पहाड़ पर बांधी थी यह उससे अलग है। यह वाचा होरे पर्वत पर 10 आज्ञाओं के रूप में बांधी गई थी। इसे हम मूसा की आज्ञाओं के रूप में भी मानते हैं। अब जो वाचा परमेश्वर इनसे यहाँ बांधने जा रहा है या करने जा रहा है वह उस देश से संबंधित है जो उन्हें मिलने पर है, और यह वाचा फलिस्तीनी वाचा भी कहलाती है। परमेश्वर ने इसराइलियों के ठीक देश में प्रवेश करने से पहले इस वाचा को बांधा। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 29 उसके 2 पद में। फिर मूसा ने सब इसराइलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया वह तुमने देखा है। मेरे मित्रों, जब हम इन बातों की गवाहियों को देखते हैं या इस गवाही को दी जा रही थी, तब इनमें से बहुत से बच्चे और युवा पीढ़ी थे। जंगल के कादेश बर्निया नामक स्थान पर जब उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, उनमें से जो सबसे वृद्ध वर्ग के लोग थे वे लगभग 60 वर्ष के थे। वृद्ध पीढ़ी में से केवल कालेब और यहोशू ही उनके साथ में गए थे। हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29 अध्याय उसके 3 और 4 पद में। लिखा है, वे बड़े बड़े परीक्षा के काम और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए। मित्रों, इन सब चिन्हों को देखने के बावजूद वे आगे नहीं बढ़ पाए। यशाया ने इस संदर्भ में बहुत कुछ कहा है। पौलुस ने रोमियो की पत्री में इसराइलियों के इस अंधेपन के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, जिसे हम रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 8 पद में पाते हैं। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुने। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम पाते हैं कि इन सब बातों का क्या अर्थ है। क्या परमेश्वर अपने लोगों को भूल गया है? जी नहीं, वे व्यक्तिगत रूप से भुलंकर थे। परमेश्वर उन्हें मोड़ना चाहता था, उन्हें सुधारना चाहता था। आज हमें भी इस विषय को जानने की आवश्यकता है। जब तक परमेश्वर लोगों की आंखें और उनके कान न खोले, वे सुसमाचार नहीं सुन सकते हैं। मुझे गलत न समझें, वे शब्दों को तो सुन सकते हैं परंतु सुसमाचार को समझ नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि आज बहुत से लोग सुनते तो हैं परंतु उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वे अंधे हैं और कान से बहरे हैं। मेरे मित्रों, हमारे बाइबल के 5 वर्षीय कार्यक्रम में एक लेखक ने एक टिप्पणी लिखी जो धार्मिक प्रवेश से संबंधित है। उन्होंने सोचा कि यदि आप बाइबल से सिखाते हैं तो आप यहाँ धार्मिक गतिविधि या किसी धार्मिक कार्यक्रम करने की तरह है। मैं चाहता था कि वह व्यक्ति रेडियो प्रोग्राम को सुने और देखे कि हम क्या करते हैं या क्या करने का प्रयास करते हैं। फिर भी मैं चिंतित था कि हो सकता है कि वह सुन भी ले, लेकिन क्या उनके समझ में आएगा? वह उसे नहीं समझ पाएगा। हो सकता है कि वह व्यक्ति अभी भी यही सोचे कि हम किसी धार्मिक क्रिया विधि को पूरा कर रहे हैं। वह अभी भी सोच सकता है कि हम बाइबल सिखाने के बहाने कुछ साजिश रच रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति की आंख और कान खोलने के लिए परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा का उस कार्य में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उस व्यक्ति का मन खुल सके। तब वे देख पाएंगे कि परमेश्वर का प्रभावशाली वचन बहुत से लोगों के जीवनों में कार्य कर रहा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि मैंने इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि उनका दिल परमेश्वर के विमुख हो गया है। उन्होंने जीवित परमेश्वर के साथ बातचीत करना छोड़ दिया था, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। मित्रों, ध्यान दीजिए और कल्पना करें कि 40 साल एक ही जूती में उन्होंने उस सफर को तय किया, और उनके जूते न तो फटे और न ही पुराने हुए। अब मूसा उनकी यात्रा के बारे में बताता है जो जंगल में उन्होंने की थी। उसके द्वारा उनकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। आज के समय में बहुत से विद्वानों का कहना है, यदि परमेश्वर उनकी आंखों के सामने कुछ चमत्कार कर दे तो वे विश्वास करेंगे। ठीक है, परंतु इन इसराइलियों को देखें जिन्होंने 40 वर्षों तक चमत्कार देखे, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। मेरे मित्रों, विश्वासी बनने के लिए लोगों में एक चाहत होनी चाहिए। लोग अविश्वासी इसलिए नहीं हैं कि वे बाइबल में क्या पढ़ते हैं या अपने आसपास क्या देखते हैं, परंतु समस्या उनके भीतरी मनुष्यत्व की है। वे अविश्वासी इसलिए हैं कि वे परमेश्वर से बैर रखते हैं। उन्हें परमेश्वर के वचन और कार्यों की कुछ भी समझ नहीं है। कितनी बुरी या कैसी भी तस्वीर क्यों ना हो, जो मनुष्य के मन है उसी को प्रकट करती है, जो परमेश्वर द्वारा प्रकट की गई है। वह कहता है कि मनुष्य का हृदय सबसे ज्यादा धोखेबाज और वह परमेश्वर के अधीन नहीं है, इसलिए जो शारीरिक है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं 8 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, जहां पर पौलुस लिखता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्रों, पौलुस ने यह बात तब लिखी जब परमेश्वर ने इसराइल को परखा और लगभग 1500 साल तक व्यवस्था देने के बाद यह स्थिति आई। यह मानवता की कितनी दुखद तस्वीर है। जो शारीरिक है वे शारीरिक रीति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्रों, मूसा ने उन्हें उनके इतिहास का वृतांत दिया, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाया, और बार बार उसे मूसा ने दोहराया कि वे परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर के प्रेम को पहचानें, उसके द्वारा दिए गए प्रार्थनाओं को पहचानें, और यही सब वाचा की पृष्ठभूमि है। तब हम आगे देखते हैं, आशीष आज्ञाकारिता पर आधारित है। याद रखें कि पलिस्ती वाचा बिना शर्त की वाचा है, परंतु उनकी आशीषें उनकी आज्ञाकारिता पर आधारित है। हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक 29 अध्याय उसके 10 से 13 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इसराइली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लड़के हारे, क्या पनभरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है उसमें तू साक्षी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। मित्रों, हम आगे देखते हैं अनाज्ञाकारिता के परिणाम। मूसा ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी अनाज्ञाकारिता लोगों और उनके देश की भूमि दोनों को प्रभावित करेगी। यह तो मानो ऐसे लगता है जैसे कोई पहले से ही की गई भविष्यवाणी हो, क्योंकि इसराइल ने वाचा को तोड़ दिया। हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 29 उसके 22 से 27 पद में लिखा हुआ है, और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें ना कुछ बोया जाता और ना कुछ जम सकता और ना घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का कारण क्या है। तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ा है और पराय देवताओं की उपासना की है जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। मेरे मित्रों, बहुत वर्ष पहले मैंने सुना कि स्वर्गीय डॉक्टर जॉर्ज गिल ने अपने एक ट्रेन से किए गए सफर के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया है कि वे एशिया माइनर से होकर पलिस्तीन देश में गए। दोपहर के समय वो यरूशलेम से मृत सागर के क्षेत्र में पहुंचे तो वहां उन्होंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक धनी अमेरिका का व्यक्ति खड़ा था। उससे अमेरिका के व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना है कि यह देश तो दूध और मधु का शहर था, फिर भी यह तो बिल्कुल विपरीत है, मैंने इससे बुरी जगह कभी नहीं देखी है। तब डॉक्टर गिल ने कहा, तुम जानते हो जो तुमने कहा वह रुचिपूर्ण बात है। तब उन्होंने अपनी बाइबल निकालकर व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ करके सुना दिया और बताया कि विदेशी लोग आकर उनसे इसी प्रकार के सवाल पूछेंगे, परमेश्वर ने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, इस देश की भूमि के साथ ऐसा क्यों हुआ, इस गुस्से और आक्रोश का कारण क्या था। और डॉक्टर गिल ने उन्हें बतलाया जो मूसा ने उन्हें 3500 साल पहले बताया था, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर की वाचा को त्याग दिया था। मेरे मित्रों, मनुष्य और देश दोनों साथ साथ ही चलते हैं। मूसा द्वारा दिए गए कानून की व्यवस्था इस देश के चारों ओर थी। यह केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि उस देश की जमीन के लिए भी थी। यह देखना अति आवश्यक है कि हमारे प्रभु के दिन जैतून का पहाड़ वृक्षों से भर जाएगा। यह लकड़ी के काम के लिए एक जाना माना क्षेत्र था। जब भी कभी शत्रुओं ने वहां पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ लकड़ी भी लूट कर ले गए और भूमि का अतिक्रमण करके उसे खाली छोड़ दिया। प्रभु का न्याय केवल लोगों पर ही नहीं पड़ता परंतु देश और उसकी भूमि पर भी पड़ता है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29 उसके 28 और 29 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेंगे, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। परंतु इससे पहले कि वाचा सौंपी जाती पहले से ही बता दिया गया कि अंत में क्या होने वाला है। मित्रों, परमेश्वर ने हमें बहुत सी बातें नहीं बताई हैं, परंतु बहुत कुछ है जो उसने हमें बता दिया है और उस देश और भूमि के बारे में पहले से ही बताया जा चुका था। अब यह उन पर निर्भर करता है कि अतिक्रमण अर्थात क्षति पहुंची हुई भूमि जो अभी ज्योति बोई जा रही है उस भूमि को सींचा जा रहा है। कृषि विभाग के अनुसार यह घोषणा की गई है कि यदि इस देश को पानी देकर सींचा जाए तो यह लगभग 15 से 25 लाख लोगों की मदद कर सकेगी। लेकिन मैंने इस देश में यरीहो से यरूशलेम तक के बातों को सुना है। जो कोई भी यहाँ यात्रा के लिए आता है तो इस प्रकार के लोगों से पूछा जाता है कि इस दूध और शहद से भरे हुए देश में न्याय का क्या मतलब है। इसराइल को इस देश के रूप में परमेश्वर द्वारा खुद चेतावनी दी गई थी, तुम इस देश के भीतर जाओ और शर्त के अनुसार इसमें बसे रहो। उन्होंने परमेश्वर की शर्त को पूरा नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं किया, अर्थात उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। तो क्या इसका यह अर्थ है कि इसराइल ने परमेश्वर की वाचा का पालन नहीं किया तो वे वापस अपने देश में नहीं जा पाएंगे? जी नहीं, परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ फलिस्तीनी वाचा बिना शर्त की वाचा बांधी है। हम इसके बारे में अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे और अधिक जानकारी को प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि जो शर्त वह हमारे साथ में रखता है हम उसे पूरा करें, और यह इसलिए नहीं कि हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसलिए कि इसके द्वारा से हमें आत्मिक लाभ पहुंचाना चाहता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन को आशीषित करना चाहता है। उसने इसराइलियों से भी यही उम्मीद की, लेकिन उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मित्रों, क्या आज आप भी अपने जीवन में ऐसा ही कर रहे हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं? आज परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप उसकी निकटता में आए, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसकी आशीषों को प्राप्त करें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप परमेश्वर के वचन में और उसके शर्त को मानने में तत्पर रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हो तेरी